आज के मुख्य समाचार। विक्टोरिया में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 484 नए मामले, लॉकडाउन हो सकता है लंबा। फेडरल सरकार ने अपने मिनी बजट पर दी कुछ नई जानकारी। और भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंचा। प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 13,000 के करीब पहुंचने की बड़ी वजह विक्टोरिया की दूसरी लहर है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 484 नए मामले मिले। इसके अलावा 2 लोगों की मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या 128 हो गई। राज्य के प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज कहते हैं कि राज्य में लॉकडाउन लंबे समय तक लगा रह सकता है। उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन प्रोटोकॉल ना मानने वाले लोगों को इस मुश्किल की वजह बताया।
From 3,810 cases, which are the cases between the 7th of July and the 21st of July, I'm very, very unhappy and very sad to have to report that nearly 9 in 10, or 3,400 cases, did not isolate between when they first felt sick and when they went to get a test. They have been at the height of their infectivity and they have just continued on as usual. I'm being as frank, as blunt, as clear as I can. We want a situation where you're no worse off, but every Victorian is much better off.
दूसरी ओर न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए। इनमें से एक होटल क्वारंटाइन से जुड़ा है, जबकि 15 कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैं। अधिकारियों ने सेल्फ आइसोलेशन से संबंधित कुछ प्रतिबंधों को फिर से बताया। कोरोना वायरस टेस्ट में नेगेटिव होने के बावजूद किसी पॉजिटिव मामले के संपर्क में आए या हॉटस्पॉट पर गए लोगों को 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेट करना जरूरी है। इस बीच प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी में नियम तोड़ धरना प्रदर्शन करने की योजना की निंदा की। दरअसल अगले मंगलवार 28 जुलाई को एक ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शन होना है, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने के खिलाफ हैं।
Well, I just think that's appalling. People should obey the law. I mean, there's no special rule for people to not obey the law. What gives people a ticket to not obey the law?
ट्रेजरर जॉश फ्रेडनबर्ग ने चेतावनी दी कि वे गुरुवार को जब विस्तृत बजट खाका पेश करेंगे तो राष्ट्रीय कर्ज बहुत ऊंचा होगा। फेडरल सरकार कोरोना वायरस महामारी के कारण एक मिनी बजट के द्वारा देश की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देगी। इस समय बेरोजगारी दर 7.4% है, जबकि अधिकारियों को चिंता है कि जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया है उन्हें मिला लिया जाए तो ये दर 11.3% हो जाएगी। श्री फ्रेडनबर्ग कहते हैं कि फेडरल सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन राज्यों और टेरिटरियों को अब और ज्यादा मदद करनी होगी।
Let's not forget, every dollar we spend today is borrowed money. The Commonwealth is increasing its debt very substantially, and you'll see those eye-watering numbers tomorrow. We're increasing that debt very substantially because the public needs it. The Commonwealth needs the states as well to be side by side. Now, Victoria's already made some announcements, and we welcome that, but any more that they can provide to those in need, including those without a job, is of course welcome.
The budget bottom line has been really hit by the coronavirus. No surprises there. We have had a big hit.
Australian Medical Association ने COVID-19 की दूसरी लहर को देखते हुए फेस मास्क के लिए एक राष्ट्रीय नीति की मांग की। विक्टोरिया में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद इसकी जरूरत पर जोर दिया गया। AMA के अध्यक्ष क्रिस जयपाला कहते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर नेशनल कैबिनेट को राष्ट्रव्यापी नियम बनाना चाहिए।
Potentially at the supermarkets or in the workplaces that we frequent. And just because someone might look well or tell you they're well doesn't mean that the risk of transmission is zero. You know, if we compare March to now, it's actually a very different phase of the illness. So of course our response to that has to evolve also.
भारत की खबरों में। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में किसी तरह की कोई राहत नहीं दिखती। देश में हर रोज 37-38 हजार नए मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक का रिकॉर्ड 40 हजार मामलों का रहा। 22 जुलाई की सुबह तक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 37,724 नए मामले रहे। इसके साथ ही भारत में कुल दर्ज मरीजों की संख्या 11,92,915 हो गई, यानी जल्द ही यह आंकड़ा 12 लाख को पार कर जाएगा। पिछले 24 घंटों में 648 लोगों की मृत्यु भी हुई। मरने वालों की कुल संख्या 28,732 पर पहुंच गई है। भारत में अब तक इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी 7,53,000 है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 63.12% चल रहा है, वहीं पॉजिटिविटी रेट 10.99% है। यानी जितने भी नमूनों की जांच की जाती है उनमें से करीब 11% नमूने पॉजिटिव आते हैं। अगर सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो भारत में 21 जुलाई तक 1,47,24,000 से ज़्यादा सैंपलों की टेस्टिंग की गई। वहीं अकेले 21 जुलाई को 3.5 लाख सैंपल टेस्टिंग हुई। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह तक उसके पिछले 24 घंटों में 37,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि सरकार पॉजिटिविटी दर कम करने पर फोकस कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने बताया कि पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। खबर भारत की ही। भारत के राजस्थान हाई कोर्ट में राज्य विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी और सचिन पायलट की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। सचिन पायलट कैंप को राहत देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी चुनौती देंगे। बुधवार देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर ने कहा कि जो हाई कोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने सचिन पायलट और बागी विधायकों को राहत देते हुए स्पीकर को उन पर शुक्रवार तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया। ये फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके पास नोटिस देने का अधिकार है और जो भी उन्होंने किया वो संसदीय लोकतंत्र के लिए एक मिसाल है। प्रस्तुत है करेंसी समाचार। ये समाचार मिलने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य चल रहा था 71.45 अमेरिकी सेंट्स और 53.37 भारतीय रुपये। खेल की खबरों में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप को टाल दिया। ऐसे में IPL 2020 के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के एक दिन बाद IPL संचालन परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने भी कंफर्म किया कि इस साल IPL का आयोजन दुबई में होगा। ब्रजेश पटेल ने NDTV को बताया कि IPL दुबई में होगा और इसके लिए अब सिर्फ सरकार से हरी झंडी की दरकार है। IPL चेयरमैन ने कहा कि दुबई में आयोजन हो सके इसके लिए लिखित में सरकार से अनुमति मांगी गई है। इसके अलावा श्री पटेल ने बताया कि सरकार से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद IPL 2020 के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। IPL में इस साल 60 मैच खेले जाएंगे और किसी भी तरह से शेड्यूल को कम नहीं किया जाएगा। IPL 2020 का आयोजन सितंबर में होगा। आपको बता दें कि IPL के आयोजन के लिए श्रीलंका ने भी BCCI को प्रस्ताव दिया था। प्रस्तुत है मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी गुरुवार को पर्थ में सुबह बारिश, फिर धूप, अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। एडलेड में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 15 डिग्री, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री। मेलबर्न में बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री। होबर्ट में भी बादल, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। कैनबरा में सुबह फॉग, उसके बाद बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में ज्यादातर धूप, अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री। ब्रिस्बेन में बारिश होगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। डार्विन में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।